ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवर भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणिर्व्यग्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महंतं गोविंद योगींद्रमथ शिष्य श्रीशंकरचार्यमथ पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककार मन्यान् अस्मत् गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शांति 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 चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां Chandrasekhara, Chandrasekhara, Chandrasekhara Rakshamam. Chandrasekhara, Chandrasekhara, Chandrasekhara Rakshamam. Chandrasekhara Rakshamam. Chandrasekhara Rakshamam. Prempuri Ashram Ayojit Krishna Kumar Daya Gita Chintan Mala Antargat Adi Guru Shankaracharya Virachit Shivananda Lahari Par Vichar Chal Raha Hai. अभ्यास के लिए 73वां श्लोक
भूदारताम मुदवहद्यपपेक्षया श्रीर भूदारये वकिमत सुमते लवस्व केदारमा कलित मुक्ति महो सदीनाम पादार बिंद भजनम परमेश्वरस्य आशा पासा क्लेश दुर्वासनादि भेदो दुक्तेर दिव्य गंधै रमंदहि आशा साटी कस्य पादार विन्दम चेतः पेटिम वासितम मे तनोतुः कल्याणीनं सरसचित्रगतिं सवेगम् सर्वोंगितं अनघं ध्रुवलक्षणाढ्यं चेतस्तुरंगमधिरुह्य चरस्मरारे नेता समस्त जगतां वृषभाधिरूढः भक्तिर्महेश पद पुष्करमा वसन्ति कादम्बनीव कुरुते परितोष वर्षत् संपूरितो भवति यस्य मनस्तटाक तज्जन्म सस्यमखिलं सफलं च नान्यतो
तो शिवानंद लहरी आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं तुम्हारे में ही छुपे हुए परम आनंद का जो खजाना है उसको तुम निकाल नहीं पा रहे हो इसीलिए संसार में तुम दीनहीन दुखी होकर भटक रहे हो। वास्तव में तुम इतनी संपन्न हो कि तुम्हें संसार में किसी के द्वारा कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। तुम खुद बहुत संपन्न हो लेकिन तुम्हें अपनी संपदा का बोध नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। दो चीज उदाहरण दिया है शंकराचार्य जी ने, कल हमने संकेत किया था, इस पर थोड़ा और विचार कर लेते हैं किसी गरीब दरिद्र व्यक्ति भिखारी वह जहां रहता था, जहां सोता था, उस जमीन के अंदर खजाना गड़ा हुआ था। जमीन उसी की है, उसी ने खरीदी थी जमीन। जमीन जिसकी है उस जमीन के अंदर जो खजाना है वह उसी का होता है, तो उस जमीन के अंदर का जो खजाना था वह भी उसी का ही है, लेकिन उसे पता नहीं है। या तो कोई भूगर्भविद उसको ये बता दे कि तुम्हारे जमीन के अंदर खजाना है, उसके बात पर विश्वास करके उसके उत्खनन में प्रयत्न किया जाए तो खजाना मिल सकता है। या फिर तंत्र और वनस्पति आयुर्वेद के हिसाब से कुछ विशेष काल में, विशेष मुहूर्त में विशेष वनस्पतियों का रसायन का निर्माण करे और वो रसायन आंख में अंजन के रूप में लगावे तो उसको जमीन के अंदर गड़े हुए खजाना दिखाई पड़ेगा। तो उस पर यहां संकेत कर रहे हैं शंकराचार्य जी श्लोक के द्वारा। तो वह रसायन क्या है? आंख में लगाने वाला अंजन। तो कल संकेत किया था ध्यानांजनम। खुद तुम यदि ध्यान का निरंतर अभ्यास करो तो उस ध्यान रूपी अंजन के द्वारा तुम्हारी दृष्टि इतनी निर्मल और इतनी स्वच्छ हो जाएगा कि तुम्हें वो खजाना दिखाई पड़ने लग जाएगा। शंकराचार्य जी शरीर को ही वह भूमि कहते हैं। शरीर को ही वह खेत की उपमा दी है। ये तुम्हारा जो शरीर है यह वह जमीन है जहां पर तुम नित्य रह रहे हो पैदा होने से आज तक, लेकिन वो जो शिव खजाना है वो भी यहीं पड़ा हुआ है, लेकिन तुम भीख मांगते हुए संसार में भटक रहे हो। ध्यानांजनेन समवेक्ष तम प्रदेशम। तम प्रदेश माने जिस जगह पर अंधकार रहता है उसको क्या कहते हैं? तम प्रदेश कहते हैं। अंधकार को तम, और अंधकार जिस जगह पर है जगह को प्रदेश, तम प्रदेश। अज्ञान कहां पर है? आपके पास अज्ञान जो है वो अज्ञान कहां पर है? तम प्रदेश क्या है? तम का प्रदेश क्या है? अज्ञान रहता कहां है? अज्ञान पांव में रहता है कि नाक में रहता है कि आंख में रहता है? कहां रहता है? ये माताजी कह रही हैं अज्ञान आंख में रहता है। अज्ञान अविद्या वेदांत का पर्यायवाची शब्द है। अज्ञान कहां रहता है? तो अंतःकरण रहता है। अंतःकरण में अविद्या अंतःकरण में रहती है। और तुम कहां रहते हो? तुम भी उसी अंतःकरण में रहते हो। और तुम्हारे यार कहां रहते हैं? परमात्मा कहां रहता है? वो भी अंतःकरण में रहता है। तो एक ही जगह पर रहने पर भी तुम परमात्मा को देख क्यों नहीं पा रहे हो? तो तम प्रदेशम। तम माने अविद्या के द्वारा आवृत हुआ हुआ है, ढका हुआ है। अब विचार करो, परमात्मा को देखने के लिए, जानने के लिए अंधकार को हटाना जरूरी है कि नहीं? परमात्मा को जानने के लिए अंधकार को हटाना जरूरी है कि नहीं? नहीं है। कैसे उल्टी बात कर रहे हो तुम? परमात्मा खुद प्रकाश स्वरूप है, तो वह परमात्मा खुद प्रकाश स्वरूप होता हुआ अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, तो तुम कैसे उस अज्ञान को हटाओगे? परमात्मा नहीं हटा पा रहा है क्या अपने प्रकाश से अज्ञान को? तुम्हारी रोशनी और परमात्मा की रोशनी में कौन सी रोशनी अच्छी है, कौन सी रोशनी बलवान है? जहां तक गीता के हिसाब से विचार करें तो तुम्हारे पास जो प्रकाश है वो तो परमात्मा से आया हुआ प्रकाश है कि नहीं? गीता के हिसाब से यदा आदित्य गतम तेजो जगद वासयते अखिलम यच्चंद्रमसी यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्। तो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तभी परमात्मा के जो प्रकाश है वह जीवात्मा को प्राप्त होगा। तो मूल सूर्य अंधकार को हटा नहीं पा रहा है, तो क्या सोलार की लाइट अंधकार को हटा पाएगा? बोलो है? दिन के मध्याह्न में चमकते हुए सूर्य जिस अंधकार को हटा नहीं पा रहा है, उस अंधकार को उसी सूर्य से चार्ज किया हुआ सोलर लाइट हटा पाएगा क्या? कल्पना कर लो, कल्पना कर लो, है ना? और यदि तुम अज्ञान को हटाने का प्रयत्न करने का मतलब क्या हुआ? तुम तो सोलर लाइट हो, तुम्हारा जो ज्ञान है वो तो सोलर लाइट है कि नहीं? बोलो। परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है और तुम जो जानोगे वो बुद्धि के माध्यम से जानोगे। ध्यान देना, क्योंकि इस श्लोक पर मुझे थोड़ा सा वेदांत के प्रक्रियागत विचार करना था, इसलिए मैंने इसको स्वर उठाया। तुम्हारी बुद्धि तो सोलार पैनल है भाई, परमात्मा का लाइट सोलार पैनल में पड़ेगा, चार्ज होगा, तब जाके बुद्धि से तुम संसार के पदार्थों को जानते हो। और चार्ज न हो सोलार पैनल, हमारे काठमांडू में, नेपाल में काठमांडू में आश्रम है, ठंडियों में तो बहुत ठंडी होती है, इसीलिए प्राय करके नेपाल में पानी गर्म करने के लिए सोलार पैनल लगाया जाता है। बत्ती के लिए भी सोलार पैनल लगाते हैं, लेकिन बत्ती की अपेक्षा पानी गर्म करने के लिए प्राय करके हर घर में सोलार पैनल लगाते हैं। तो दिन भर पानी गर्म होता है, एक टंकी में रिजर्व होता है, तो सुबह नहाने के लिए वो टंकी का पानी ले लेते हैं, तो अलग से बिजली से या गैस में या अन्य साधनों से पानी गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दिन में खूब धूप खिला हुआ हो तब तो पानी सुबह खूब गर्म गर्म मिल जाएगा, और कदाचित आज की तरह मौसम दिन भर बारिश हुई, धूप नहीं खिला, तो दूसरे दिन सुबह पानी गर्म नहीं मिलने वाला, क्योंकि चार्ज नहीं हो रहा, सूर्य नहीं है, तो क्या करेगा वो पैनल? इसी तरह अंतकरण में तीन चीज हैं, समझे कि नहीं? अंतकरण में तीन चीज है, एक तो स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, दूसरा जीवात्मा है, और तीसरा अविद्या है। तो अंतकरण क्या हुआ? तम प्रदेश हुआ कि नहीं? परमात्मा प्रदेश भी हुआ, तम प्रदेश भी हुआ। अब इनमें से
परमात्मा स्वयं प्रकाश रूप है, जीवात्मा सोलर पैनल है, परमात्मा सूर्य है, जीवात्मा की बुद्धि सोलर पैनल है, और जीवात्मा जो जानेगा उस पैनल के माध्यम से जानेगा। तो अंधकार को अब हटाएगा कौन? बोलो, परमात्मा हटाएगा कि जीवात्मा हटाएगा? नहीं, वही तो कह रहे हैं ना, अब वो स्वयं प्रकाश होता हुआ वहां अंधकार रह गया। शिवानंद लहरी में, इसी शिवानंद लहरी में ये बात स्वयं शंकराचार्य जी ने प्रश्न के रूप में उठाया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है श्लोक, मैं गुनगुनाता रहता हूं। पहले व्याख्या हो चुकी है पिछले साल, मैं आज फिर प्रसंग आ गया, मैं सुना रहा हूं तुम्हें। शंकराचार्य जी कहते हैं भगवान शिव से, एको वारी जवान धवा छिति नवो व्याप्तम तमो मंडलम भीत्वालोचन गोचरोपि भवति त्वं कोटि सूर्य प्रव विद्य किम न भवस्य हो घनतरम कीदृक् भवेन मत्तमा तत्सर्वं व्यपनीय मे पशुपते साक्षात प्रसन्नो भव। इसी शिवानंद लहरी में शंकराचार्य जी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे शिवा, हमने देखा है एक वारिज बांधव सूर्य, वारिज माने कमल, कमल का मित्र माने सूर्य। सूर्य को क्या कहते हैं? वारिज बंधु, कमल का मित्र, क्योंकि कमल का एक नियम है, सूर्य उदय उदित होंगे, सूर्य प्रकट होंगे तो वो खिलेगा, और सूर्य अस्त हो गए तो बंद हो गए। व्यवहार में भी हमारा नियम क्या है? अपना खासम खास मित्र सामने आए तो चेहरा खिल उठता है, उठता है कि नहीं? और अपना कोई दुश्मन आ गया तो क्या चेहरा खिलेगा? प्रसन्नता होगी मन चेहरे में, लेकिन अपना पुराना मित्र आ जाए अचानक और मिल जाए, फिर देखो चेहरा। तो मित्र का काम क्या है? चेहरे को खिलाने का है कि नहीं, बोलो? मित्र को देखते ही चेहरा खिल उठता है, लेकिन मित्र अकेले आए तो खिल उठेगा, लेकिन अपने बच्चे कच्चे चार पांच लेकर बंबई आ जाए तुम्हारा हॉलीडे मनाने, तुम्हारा चेहरा सिकुड़ जाएगा, क्योंकि बजट बढ़ जाएगा ना। अब वो एक हफ्ता बैठ जाएगा, तुम्हारा बैलेंस ही सब बिगड़ जाएगा, तो चेहरा सिकुड़ जाएगा। फिर भी अंदर से चेहरा सिकुड़ने पर भी बाहर तो दांत तो देखा नहीं पड़ेगा, व्यवहार के लिए करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो? नहीं तो क्या कहेगा वो? बड़ा भारी मित्र कहता था हम गए और अब दरवाजे ही नहीं खोली। तो वारिज बांधव सूर्य का नाम है मित्र, सूर्य का नाम है वारिज बंधु मित्र एक, अकेला है अंतरिक्ष में, सूर्य एकला ही है, अकेला है। दिन में 10 सूर्य नहीं होते अंतरिक्ष में, एक ही सूर्य होता है। एक वारिज बांधव सूर्य करता क्या है? छिति नवो व्याप्तम तमो मंडलम, रात भर पृथ्वी और अंतरिक्ष में व्याप्त हुआ हुआ अंधकार को अपनी उपस्थिति मात्र से एक सेकंड में ही नष्ट कर देता है। किसी का मदद लेना पड़ता है सूर्य को? हैं? धरती और अंतरिक्ष में व्याप्त हुआ हुआ रात्रिकालीन अंधकार को हटाने के लिए सूर्य को किसी का मदद लेना पड़ता है, अकेले हटा देता है। सूर्य में इतनी सामर्थ्यता है और तुम्हारे में कितनी सामर्थ्यता है? शंकराचार्य जी कहते हे शिवा, त्वम कोटि सूर्य प्रभा। सूर्य में जो रोशनी है, जो प्रकाश है, उसके करोड़ गुना प्रकाश तो तुम्हारे में करोड़ गुना। तम कोटि सूर्य, कोटि सूर्य, सम प्रभा त्वम। सूर्य यदि 100 वोल्ट का है तो शिव 1000 वोल्ट के हैं। इस हिसाब से पता चले कि नहीं, बोलो। सूर्य 100 वाट के बल्ब हैं तो शिव कितने वाट के हैं? हैं? करोड़ों वाट। कम है बाप, इतना बड़ा भारी रोशनी है। तुम कोटि सूर्य प्रभा, ऐसी रोशनी तो ये शिव तुम्हारे में स्वाभाविक है। और 100 वाट जो रोशनी सूर्य में है वो तो तुमसे चार्ज होने पर है। सूर्य तो सोलर पैनल है, वो तुमसे चार्ज हो रहा है और तुमसे चार्ज होकर सूर्य में 100 वाट रोशनी का यदि पावर आ गया, करोड़ों वाट पावर तो तुम्हारे स्वरूप में है, किसी से चार्ज होना नहीं है, स्वाभाविक ही है। तुम कोटि सूर्य प्रभा। तब उस छोटा सा सूर्य ने धरती और अंतरिक्ष में व्याप्त हुआ तम अंधकार को एक सेकंड में हटा दिया और सूर्य स्वयं सबके आंखों के सामने प्रकट भी हो गया। अंधकार भी हटाया और स्वयं प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर भी हो गया। और इधर तुम उस अंतकरण में रह रहे हो और उसी अंतकरण में अविद्या भी रह रही है। और अंतकरण में रहने वाली अविद्या कितनी बड़ी है? अंतकरण खुद अंगुष्ठ परिमाण का है तो उस अंतकरण में रहने वाला जो अविद्या कितना बड़ा है। वेद्य किम न भवस्य हो घनतरम कीदृक भवे तप मत्तमा। मेरे अंतकरण में रहने वाला अंधकार क्या तुम्हारे रोशनी से भी, प्रकाश से भी हट न सकने वाली है? किद्रिक भवेद मत्तम, मैं क्या मानू? मेरे अंतकरण का जो अंधकार है वह तुम्हारे रोशनी से भी नहीं हट सकता, ऐसा मानू? तब तो फिर किसी भी रोशनी से नहीं हट सकता। फिर वो रह कैसे गया? जहां तुम हो वहीं वो अंधकार रह कैसे गया? मैं ये मान रहा हूं कि हे शिवा, तुमने वो अंधकार हटे ये संकल्प नहीं किया है, इसलिए रह गया। मेरा भक्त मेरा दर्शन करे इस प्रकार के मेरे ऊपर अनुग्रह नहीं हुई है। ये अज्ञान रही रहे, मेरे साथ ही अंतकरण में रहे, तो अज्ञान के प्रति तुमने करुणा कर दी और मेरे प्रति इतनी निष्ठुरता क्यों? बोलो। मैं प्रार्थना करता हूं महाराज साक्षात प्रसन्नो भव। अब ज्यादा हो गया, उस अंधकार को तो हटा नहीं है और आप ही हटा पाओगे, मैं नहीं हटा पाऊंगा। इस तरह वहां प्रार्थना की गई थी, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? वो अंधकार तुम्हारे लिए कोई अड़चन पैदा नहीं कर सकती है। अंधकार भले ही रहे वहां, लेकिन तुम एक ऐसा अंजन तैयार करो जिसको आंख में लगाओ, लगाते ही अंधकार में ही वस्तु दिखाई पड़ेगी, अंधकार को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रसायन की विशेषता है। बोलो, अंधकार यदि हटा नहीं सकते हो, अज्ञान को तुम हटा नहीं सकते हो, तो क्या करो? ऐसा अंजन बनाओ आंख के, वो आंख में लगा लो, अंधकार भले ही रहे लेकिन उस अंधकार में भी वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। यहां शिव दर्शन के लिए अंजन, कौन सी अंजन का प्रयोग करना है, ये शंकराचार्य जी बता रहे हैं। ध्यानांजन, नित्य निरंतर ध्यानांजन से अविद्या के रहते हुए ही शिव दर्शन हो जाएगा। ध्यानांजनेन समवेक्ष तम प्रदेशम। तम प्रदेश माने हृदय। जैसे जमीन के अंदर गाड़े हुए धन है, उसी तरह तुम्हारे हृदय में शिवरत्न है। कौन सा रत्न? शिवरूपी परमात्मा रूपी आत्मा रूपी रत्न है। और न देखने के कारण तुमको, उसके ज्ञान न होने के, भान न होने के कारण तुम्हें तमाम दुख दरिद्र से जूझना पड़ रहा है। ध्यानांजनेन समवेक्षतम प्रदेशम भित्वा महाबलिभिरीश्वर नाम मंत्री। अंजन लगाने से जमीन के अंदर गड़े हुए धन तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन अपने आप वो धन बाहर नहीं आएगा। दिखाई तो पड़ेगा कि यहां पर धन है। जैसे आजकल वैज्ञानिक लोग कहीं बोरिंग करना होता है खेत में, किसान लोग वह यंत्र लाते हैं ना, क्या जियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल सिस्टम के माध्यम से वो यंत्र लाते हैं और वो जमीन में वो यंत्र को रखते हैं। उससे ये पता चलता है कि जमीन के अंदर कितनी गहराई में पानी है और कितनी मात्रा में पानी है, ये पता चल जाता है। और उसके आधार पर वहां कुआं खोदना होता है या डीप बोरिंग करना होता है। किसान बोरिंग करते हैं या फिर कुआं खोद लेते हैं। लेकिन वो यंत्र पानी है ये तो बताएगा, इनार तो कुआं तो नहीं खोदेगा ना, ट्यूबवेल तो लगाएगा नहीं। वो पता लगने के बाद ट्यूबवेल तो तुमको लगानी पड़ेगी, दूसरे यंत्र से प्रयोग करके तब उसको कुआं खोदा जाए या फिर ट्यूबवेल लगाया जाए। इसी तरह ध्यान रूपी अंजन का प्रयोग करने पर तम प्रदेश अंतकरण में अविद्या से ढके हुए शिव तत्व यहां है ये तो तुम्हें पता चलेगा, लेकिन उसका साक्षात्कार करने के लिए तुम्हें साधन का प्रयोग करके उत्खनन करना पड़ेगा। जैसे धरती में धन है पता चलने के बाद धरती का उत्खनन करना पड़ेगा कि नहीं, तो उत्खनन करने का यंत्र क्या है? नाम मंत्री, शिवस्मरण नाम मंत्री। सतत शिव का स्मरण, परमात्मा का स्मरण या फिर नाम जप। कौन सा नाम? महर्षि पतंजलि ने दो प्रकार से समाधि लाभ हो सकता है ये बताया। समाधि लाभ के लिए एक प्रक्रिया बता दी, योगश्चित्तवृत्ति निरोध। पांच प्रकार के चित्तवृत्ति हैं, उन पांचों प्रकार के चित्तवृत्ति को निरोध करना पड़ेगा, तब चित्तवृत्ति सर्वथा निरुद्ध हो जाएगा, तब तुम्हें समाधि उपलब्धि हो जाएगी। और कदाचित यदि अष्टांग योग साधना न करके चित्तवृत्ति निरोध नहीं कर सके तो उसके विकल्प के रूप में महर्षि पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधानात बुआ ये कर दिया, ये दूसरे सूत्र का निर्माण कर दिया। वा माने विकल्प, चित्तवृत्ति निरोध करो तो समाधि का आनंद का अनुभव होगा, और चित्तवृत्ति निरोध नहीं कर सके तो इसका विकल्प है ईश्वर प्रणिधान। और तुम ईश्वर प्रणिधान करोगे तो ईश्वर कृपा से तुम्हें वो समाधि चित्तवृत्ति निरोध के बिना भी समाधि की अनुभूति होगी। ईश्वर प्रणिधान अथवा ईश्वर प्रणिधान क्या उपाय क्या है महाराज? तो महर्षि ने पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान के लिए प्रक्रिया बता दी, तज्जप तदर्थ भावना। उसके नाम का सतत जप करो और नामी का स्मरण करो। देखो, नाम का जप करो, नामी का स्मरण करो, तज्जप तदर्थ भावना। तो जप के लिए किस नाम का प्रयोग करें महाराज? तो वह महर्षि पतंजलि ने कह दिया, प्रणव का जप करो, ओमकार का जप करो, एकाक्षर ही प्रणव, क्योंकि प्रणव को मांडुक्य उपनिषद में परमात्मा का अति प्रिय नाम के रूप में प्रस्तुत किया। ओमकार को मांडुक्य उपनिषद में परमात्मा का अति प्रिय नाम है, नेदिष्टतमम प्रियतमम, सबसे नजदीक का नाम, जो सबसे प्रिय होता है वही ना नजदीक का होता है ना? कभी कभी घर में व्यवहार में नाम रखा जाता है, मां बाप या घर के कुटुंबी और बंधुजन कुछ नाम रख देते हैं। नामकरण के दिन में तो जो राशि से नाम जुड़ा, राशि से जो मिल गया, उसी अक्षर के आधार पर नामकरण कर देते हैं। लेकिन बहुत प्यार से पुकारने वाला नाम घर में ज्यादा प्रयोग होता है। मां भी बहुत प्यार करती है तो कुछ और नाम से पुकारने लग जाती है। कोई व्यक्ति जरा मोटा हो तो घर में ए मोटे बोल देते हैं, घर का बाप भी बोलता है गे मोटे इधर आओ, मां भी बोलती है गे मोटे इधर आओ। मां जो प्यार से बोलती है मोटे है, लेकिन वो उसको प्रिय नहीं है। बड़े होने के बाद यार दोस्तों के बीच में मां फिर कह दे मोटे, उसको अच्छा लगेगा? तो कोई पूछेगा कि अरे भाई तुझे मोटे क्यों कहा किसी ने? बोले मेरी मां बड़े प्यार से कहती थी, बचपन में वही आदत पड़ी है इसलिए वही बोल रही है। समझाना पड़ेगा कि नहीं? तो नेदिष्टतम अति प्रिय नाम है, प्रणव का जप करो, तज्जप तदर्थ भावना। परमात्मा का यानी शिव का सबसे प्रिय नाम ओम है, यही वह कुद्दाली है, वही ये फावड़ा है जो तुम परमात्मा के आवरण उसको हटाकर निरावृत्त कर सकते हो। तो वेदांत में और भक्ति में ये अंतर है। वेदांत में उस आवरण को हटाने की क्षमता सिर्फ अखंडाकार वृत्ति में है, अखंडाकार वृत्ति के बिना उस आवरण को तुम नहीं हटा सकते हो। तो भक्ति में सतत प्रणव जप शिव नाम मंत्र ही, उसी में इतनी क्षमता है कि वह उस आवरण को हटा सकता है। दिव्याश्रितम भुजगभूषण मुद्वहंती, कल इसकी थोड़ी व्याख्या तो की थी हमने, एक सामान्य शास्त्र में या सामान्य लोक भाषा में ये प्रचलन है, जहां दिव्य रत्न रहते हैं वहां सर्प का निवास होता है, यही कहा जाता है। इसलिए कोई धन के प्रति आसक्त हुआ कोई धनिक व्यक्ति सेठ, बोले कि वो धन के प्रति आसक्ति दिखाता है तो लोग कह देते मरने के बाद सर्प बनेगा ये, ऐसा कह दिया जाता है व्यवहार में, है ना। पैसे के लिए जो मरी मेट करता है वो, तो व्यवहार में कह देते ये इतना मरता है पैसे के लिए संपत्ति के लिए, ये जरूर मरने के बाद सर्प बनेगा ये, क्योंकि संपदा और सर्प की राशि एक ही है भाई, और ये मान्यता है। दिव्याश्रितम भुजग भूषण उद्वहंती, भुजग भूषण ये, भुजग का माने सर्प का भूषण क्या है, मणि। तो हम जीवात्मा, तमाम जीवात्मा रूपी सर्प का भूषण क्या है, मणि। मणि क्या है, तो शिव। शिव ही जीव का भूषण है, जैसे मणि सर्प का भूषण है वैसे ही शिव परमात्मा जीव का भूषण है। क्या है वो, ये पादार पद्मन मिहते शिवते कृतार्थ। जब वो रत्न प्राप्त होता है, तब शिव रत्न प्राप्त होता है, तब जीव कृतार्थ हो जाता है। इस बात को अन्य अलंकार के माध्यम से, अनुप्रास अलंकार के माध्यम से, शब्दालंकार अनुप्रास अलंकार के माध्यम से शंकराचार्य जी ये दूसरा वसंत तिलका छंद के में एक श्लोक की रचना करते हैं। यहां दूसरा भाव है, भूदारताम उदवहत यदपेक्षया श्रीर, भूदार एव किमत सुमते लवस्व, केदार मा कलित मुक्ति महौषधीनां, पादार विंद भजनम परमेश्वरस्य। अनुप्रास शब्दालंकार अनुप्रास, भूदार भूदार केदार पादार, यही तो छंद के जो है अनुप्रास है, भूदार पादार केदार, ये देख लो ऐसा शब्द प्रयोग होता है तो उसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, शब्दालंकार अनुप्रास बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है, भूदारताम उदवहत यद अपेक्षया श्री भूदार, श्री भूदार किसके लिए कहा, श्री भूदार विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए कह रहे हैं। भगवान विष्णु कैसे हैं, श्री और भू दारा वाले हैं, दारा माने पत्नी, संस्कृत में पत्नी को क्या बोलते हैं, दारा। तो श्री दारा भू दारा दो पत्नी वाले हैं भगवान विष्णु। तो आप विष्णु क्यों नहीं हो पाए, एक पत्नी हो गए ना इसीलिए आप एक पत्नी हो गए, खाली श्रीदारा हो गए आप, है ना, संपत्ति तो है भूदारा नहीं है, या फिर भूदारा हो गए, फ्लैट तो जैसे तैसे मां बाप ने बना के रख दिया था, पैसा नहीं कमा पाए। हाँ सूचक भाई भूदारा तो पिता से मिल गया होगा आपको, है ना, फ्लैट पिताजी का खरीदा हुआ है कि अपना खरीदा है, अपना है तो आप भूदारा है ना, भूदारा तो हो गए, श्रीदारा नहीं हुए, संपत्ति है पैसों छे मने आप हो तो भूदारा श्रीदारा, तो वही कहा गया श्री भूदारा। क्या किया उन्होंने श्री भूदारा ने, है श्री लक्ष्मी और भू पृथ्वी, दो धारा वाले भगवान विष्णु ने क्या किया? भूधारताम उदवहत, भू का उद्धार किया। भूधार माने पृथ्वी, भू धार माने बराहा, भूधार माने बराहा सुअर। सुअर का काम क्या है? भू उदार, पृथ्वी का उदार करते हुए चलता है, उधेड़ता है वो, उधेड़ना, हिंदी में उधेड़ना बोलते हैं ना, पृथ्वी को चीरता हुआ चलता है ना, वो सूंड से पृथ्वी को चीरता हुआ चलता है, उसको भू उधेड़ना बोलते हैं हिंदी में, उधार बोलते हैं संस्कृत में। भू उदार ताम यानी बराहा रूप धारण किया। किसने? श्री भूधार ने भूदारता का रूप धारण किया। किसके लिए महाराज? ऐसे शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो? यद अपेक्षा, जिसकी अपेक्षा से भगवान विष्णु ने बराहा का रूप धारण किया। क्यों धारण किया, करना पड़ा बराहा का रूप? तो दो प्रसंगों में भगवान विष्णु ने बराहा का रूप धारण करना पड़ा, दो जगह ये प्रसंग आता है। एक तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पाताल में ले गया, तो सारे सृष्टि का विस्तार करने का जो आधार है धरती, वो धरती ही नहीं है, तो सृष्टि का विस्तार कहां करें? तो भू आधार के बिना सृष्टि कहां से करेंगे ब्रह्मा जी? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज तुम सृष्टि का विस्तार करो तो कहते हो, लेकिन सृष्टि का विस्तार करूं कहां, पृथ्वी तो है ही नहीं, इसलिए मैं कमल के पत्ते में रह रहा हूं। पृथ्वी होती तो पृथ्वी में रहता, पृथ्वी तो ही नहीं है, इसलिए मैं कमल के पत्ते में रह रहा हूं। देख लो, बोले पृथ्वी कहां गई? बोले हिरण्याक्ष ले गया पृथ्वी को, हिरण्याक्ष ले गया पाताल में। तो जब तक तुम उस पृथ्वी को पाताल से लाकर यहां प्रतिष्ठापित नहीं करोगे, तब तक मैं सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकता महाराज। तो अच्छा भाई, पृथ्वी को मैं ला देता हूं। तो ब्रह्मा का रूप धारण किया और गए पाताल में, और हिरण्याक्ष से लड़ाई करके उसको मार के पृथ्वी को लाकर स्थापित की। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम आरंभ किया, मानस सृष्टि, तब सनत कुमारों को सबसे पहले उत्पन्न किया, नारद जी को उत्पन्न किया, सनत कुमारों को उत्पन्न किया। सनत कुमारों ने कहा कि महाराज हमारा नाम और काम बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम हमेशा कभी भी बूढ़े न होने के कारण तुम्हारा नाम कुमार है, मेरी आशीर्वाद, मैं कृपा, मैं आशीर्वाद देता हूं तुम कभी बूढ़े न होगे, इसलिए तुम कुमार रहोगे। काम क्या करना है हमने? बोले भगवान की आज्ञा है सृष्टि का विस्तार करो, तो तुम लोग सृष्टि विस्तार में लग जाओ। सनत कुमारों ने कहा कि नहीं बाबा, हम ये प्रपंच में पढ़ने वाले नहीं, ये भागवत का प्रसंग है, हम ये प्रपंच में नहीं पढ़ेंगे। तो वो चल पड़े लंगोटी लगाकर। तो ब्रह्मा जी को आ गया गुस्सा, मेरा बेटा, मेरे बच्चे और मेरी बात नहीं मानते हो। तो उनके जाने के बाद ब्रह्मा जी को जो गुस्सा आया, उससे फिर यहां से एक पानी का बूंद निकला, पसीना निकला, और जमीन में पड़ते ही बच्चे का रूप धारण करके जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा ब्रह्मा जी से, मेरा नाम बताओ और मेरा काम बताओ, मुझे क्यों पैदा किया है काम बताओ, मेरा नाम क्या है नाम बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तू पैदा होते ही रोने लग गया इसलिए तेरा नाम रुद्र, जा काम क्या करें। बोले सृष्टि का विस्तार करो, भगवान की आज्ञा है सृष्टि करना है, तुम मदद करो सृष्टि विस्तार करो। बोले ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, बस रुद्र सृष्टि शुरू कर दिए तो सब है? रुदती रोदयती इति रुद्र है? खुद भी रोए दूसरों को भी रुलावे रुद्र। तो जहां गुस्से से पैदा हुआ है वो सृष्टि कैसे होगी, है ना? पूरे रुद्र सृष्टि मारो काटो लूटो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मा, ऐसी सृष्टि करने के लिए तुझे नहीं कहा था, ये क्या सृष्टि कर दी, बंद करो ये। तब नारद जी ने रुद्र को माने ब्रह्मा जी ने रुद्र को बुलाया, हे बेटा इधर आ। बोले हम पिताजी, ये कैसी सृष्टि कर दी तुमने। बोले हम जैसा जानते थे वैसे कर दी, बंद करो ऐसी सृष्टि, परमात्मा को मंजूर नहीं है, फिर हम क्या करें। तो बच्चा राख लपेट के हिमालय में। बोले जो आज्ञा। तो रुद्र चले गए हिमालय। अब ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि दो दो बार सृष्टि की, सनत कुमार भाग गए, रुद्र भी गया तपस्या करने, अब मैं कैसे सृष्टि का विस्तार करूं, ये चिंता में लग गए ब्रह्मा जी। तो शरीर फट गया, भागवत सुनी है ना तुमने, शरीर फट गया। तो बाएं भाग से सतरूपा, दाहिने भाग से मनु, फिर वहां से मनु और सतरूपा के माध्यम से यह युग्म सृष्टि का आरंभ हुआ। तो तब से जो पैदा हुए सब मनुष्य हो गए, है ना? तो ये प्रसंग वहां भूधारता की, विष्णु ने वराह रूप धारण क्यों की, सृष्टि विस्तार करने के लिए आधार चाहिए था, उसको लाने के लिए वराह का रूप धारण करना पड़ा। दूसरे बार फिर विष्णु ने वराह का रूप धारण किया, कब, जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों के आपस में विवाद हो गया। इसी उपराण का प्रसंग, पहले सुनाया विष्णु भागवत का प्रसंग, अब शिव पुराण का प्रसंग। किस बात को लेकर कि अहम ज्येष्ठ अहम श्रेष्ठ, मैं तेरे से बड़ा हूं तू मेरे से छोटा है, तो छोटा होने के कारण पहले मुझे अभिवादन करना पड़ेगा, तू कर। अब विष्णु कहते हैं कि तू छोटा है मुझे अभिवादन कर, ब्रह्मा कहते हैं कि तू छोटा है पहले मेरा अभिवादन कर। कौन छोटा और कौन बड़ा निर्णय कैसे करें, इस विवाद को समाधान कैसे करें, कौन करेगा। दो व्यक्ति यदि परस्पर विवाद करे किसी मुद्दे को लेकर तो तीसरा निरपेक्ष व्यक्ति ही उसका समाधान कर सकता है। शिवपुराण में कथा आती है, पुष्पदंताचार्य जी ने शिव महिमनि स्तोत्र में इसका संकेत भी कर दिया। तो उसी दोनों के विवाद के बीच में एक अनालय स्कंध बपुषा, अग्निमय स्तंभ वहां खड़ा हो गया दोनों के बीच में। अनालय स्कंध बपुषा और ब्रह्मा और विष्णु के देखते देखते ही ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र विष्णु का सुदर्शन चक्र, दोनों ही उस अग्नि स्तंभ में गायब हो गए, लुप्त हो गए। तब ब्रह्मा और विष्णु ने विचार किया क्या है, हम दोनों के विवाद के बीच में ये कहां से आ गया, क्या चीज है, और हमारा अस्त्र गायब हो गया। पहले तो इसको पता लगाए कि है क्या चीज और अपना हथियार वापस ले ले, तब फिर विवाद करेंगे। लड़ के जितना होगा तो भी जीतेंगे। तो ठीक है, सहमति हुई। यदुपरि विरिंची हरिराधा, तो वह जो अग्नल स्कंद पप्पू ज्योतिर्मय लिंग, वह कहां से शुरू हुआ और कहां समाप्त हुआ इसका पता कौन लगाए। बोले ऊपर की तरफ हम जाएंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे हम जाएंगे ऊपर, कहां समाप्त हुआ है अंतिम छोर का पता लगा के आएंगे हम। तुम नीचे जाओ, कहां से शुरू हुआ है। विष्णु कहा कि हां ये तो नीचे जाने का काम हमने पहले भी किया है, हम चले जाएंगे। तो फिर वहां भी उस शिवलिंग का, ज्योतिर्मय लिंग का आदि को पता लगाने के लिए श्री भूदार ने, किसने, श्री भूदारा वाले ने, केवल लक्ष्मीपति नहीं भूपति, हाँ दो पत्नी है ना, इसीलिए भूपति लक्ष्मीपति, इसीलिए दोनों को जोड़ दिया शंकराचार्य ने, श्री भूदार, श्रीदारा और भूदारा वाले श्री भूदारा। विष्णु ने बराह का रूप धारण करके क्या क्या, भूदारताम बराह का रूप धारण करके उद्वहन थी, नीचे चले गए पता लगाने के लिए। लेकिन बहुत नीचे जाते जाते पाताल तक तो गए, लेकिन वहां भी उसका अंत या आदि कुछ भी पता नहीं चल रहा है, उसके आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो वहीं से विष्णु तो वापस आ गए, यह अनिर्वचनीय है, आ गए। ब्रह्मा ऊपर के चले गए ब्रह्मलोक पर्यंत, लेकिन उसका तो कोई अंत ही नहीं, और आगे गया है। अत्यतिष्ठ दशांगुलम मा है, वो तो और आगे गया है। अब आगे कहां जाएं हम, लौट के जाना पड़ेगा। लेकिन बड़ा होने का जो ख्वाब था ब्रह्मा को, उसने झूठ का आश्रय लिया। सुप्राण सुनी है आप लोगों ने कई बार, जाके उसको कह देता हूं मैंने पता लगाया, और कह देने से मैं बड़ा होता हूं तो हर्जा क्या है, लगाया कि नहीं लगाया, यहां और तो कोई है ही नहीं साक्षी। लेकिन तुमने लगाया कि नहीं लगाया पूछ लिया, साक्षी कौन है, तो कोई साक्षी भी लेके जाना चाहिए। गलत आदमी गलती करने से पहले बचने की बड़ी फॉर्मूले तैयार करता है, पहले सोच लेता है वो, यदि पकड़ा गया तो मैं क्या कहूं, क्या करूं, कैसे करूं, है ना, करता है कि नहीं, बोलो। भगवान श्री कृष्ण ने किया कि नहीं, बोलो। महाभारत युद्ध में, युद्ध भूमि में है, युद्ध भूमि में जब कर्ण के पास जाना था तो साड़ी पहन के गए कि नहीं, बोलो। कुंती को साथ में लिया और कुंती के साथ ही सहेली बनकर साड़ी पहन कर गए, हैं, कहीं पता ना चले। कृष्ण स्वयं कर्ण कहां गए ये बात और को और लोगों को पता न चले, रात के समय में, कुंती तो महिला है, स्त्री है, साड़ी पहनी है, और कृष्ण ने भी साड़ी पहन ली, क्योंकि गलत काम करना था ना, इसलिए वो छुपने की पहले सोच लिया, ऐसा करके जाऊं तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। बोले कि चप्पल की आवाज आ रही है भाई, कोई जग जाएगा तो क्या करें महाराज। बोले लाओ चप्पल, हम ले लेते हैं बगल में। अपने आप तो होशियार थे कृष्ण, इसलिए खाली पांव गए, कुंती चप्पल ला कर गई, पहन कर गई थी, और चप्पल के आवाज आने लगा, तो बोले लाओ वो चप्पल हम ले लेते हैं। तो कुंती ने चप्पल खोली, कृष्ण ने चप्पल को बगल में दबा लिया, साड़ी पहने हुए गए कर्ण के पास जाकर। ये क्या रूप बनाया है, क्यों आए हो? बोले बेटा, तुमने जो प्रतिज्ञा कर ली कि कल सुबह मैं मारूंगा, तो तुम जो है मेरे बेटे हो, तुम कौंतेय हो, ये समझाने के लिए आए। हाँ, ये समझाने के लिए आए कि तेरी मां कुंती, बोलो इसी से सुन ले, इसी के मुख से सुन ले कि तू इसका बेटा है कि नहीं। अर्जुन युधिष्ठिर जैसे इसके बेटे हैं, कुंती है, तू भी कुंती है। कुंती ने कहा कि हां बेटा, तू मेरा ही बेटा है, इसीलिए तू अपने भाइयों को मत मारो, युद्ध बंद करो। कर्ण ने कह दिया ठीक है मां, शास्त्रों में लोक में सर्वत्र यही प्रसिद्ध हुआ है, प्रसिद्धि हुई है कि तुम पांच बेटे की मां हो, कुंती के पांच पुत्र हैं, तो मैं तुम्हारे सामने ये प्रतिज्ञा करता हूं, अर्जुन के बायक और किसी को मारूंगा नहीं। मेरे द्वारा अर्जुन मर गया तो भी पांच पुत्र के पांच ही रहेंगे, तुम पांच पुत्र की मां रहोगी, और अर्जुन द्वारा मैं मर गया तो भी तुम पांच पुत्रों की मां रहोगी। इतने ही वचन तुम्हें दे सकता हूं मैं कि मैं अर्जुन के अलावा और किसी को मारूंगा नहीं, और तुम ना आती तो मैं और को भी मार देता है, मैं युधिष्ठिर को भी मार देता, नहदेव, नकुल, सहदेव, भीष्म, भीम, सबको मार देता, मार भी सकता, लेकिन अब यह बात पक्की है कि चार पुत्र बचेंगे, तो या मैं मरूंगा इस महाभारत में या अर्जुन मरेगा। तो इतनी फायदा हुआ कि नहीं कृष्ण के कपट से, बोलो? तो बदमाशी करने वाला पहले ही प्लान बना लेता है। बोधारतम, ब्रह्मा जी ने बदमाशी करनी थी इसलिए प्लान बना ली। तो एक नंदी को, कामधेनु गाय को ले लिया, चल कहां जाना है महाराज? तो कामधेनु गाय तो स्वर्ग में थी, बृहस्थी में आते, ब्रह्मलोक से आते समय स्वर्ग में घुस के कामधेनु गाय को लेके आए, चल नीचे पाताल में, नहीं भूतल में, क्यों महाराज? बोले ब्रह्म विष्णु वहां बैठा हुआ है, उसके सामने मेरे पक्ष में तूने बयान देनी है। क्या बयान महाराज? बोले ब्रह्मा ने ये ज्योतिर्लिंग का पता लगाया, ये मैंने देखा है, ये साक्षी करना। नहीं महाराज, विष्णु के सामने, शिव के सामने मैं झूठ कैसे बोल सकता? झूठ नहीं बोलेगी, मेरे लिए तू इतना भी नहीं करेगी तो मैं अभी श्राप देकर मार डालूंगा। तो बिचारी कामधेनु गाय डरने लगी, तो मरना है इसके श्राप से, मरने की अपेक्षा तो जाती हूं, विष्णु के आगे, शिव के आगे कुछ न कुछ तो करेंगे ही। तो नीचे आए, ब्रह्मा ने कहा, विष्णु से पूछा, पता लगाया? विष्णु ने तो कहा कि नहीं महाराज। बोले आपने पता लगाया? बोले हां, और क्या? अच्छा भाई, साक्षी कौन है? बोले ये। विष्णु ने गाय से पूछा, कामधेनु से, सचमुच ये बुढ़े ने पता लगाया है ऊपर? तो ब्रह्मा के तरफ मुंह करके हां कहा, कह दिया, और विष्णु के तरफ पूछ करके नहीं, हाथ हिला दी, नहीं, बड़ी चलाक थी वो, पूछ करके कह दिया नहीं है। कई चिन्ह है, कई लक्षण देकर निषेध कर दिया, पूछ हिलाया नहीं, गोबर कर दिया नहीं, डर के मारे पेशाब कर दिया नहीं है, दूध दिया नहीं, तो सत्य का आश्रय जिन जिन ने लिया वही अमृत हो गए। तो पंचामृत के लिए क्या क्या चाहिए बोलो? दूध दही। और पंचगव्य के लिए क्या चाहिए शुद्धिकरण में? और गोबर भी चाहिए। पंचगव्य, दूध दही घी। नहीं नहीं, पंचगव्य में मद नहीं पड़ता है, तुम लोगों को पता ही नहीं है। पंचामृत में मद पड़ता है, पंचगव्य में मद नहीं पड़ता है, क्योंकि मद गव्य नहीं है ना। गव्य का अर्थ क्या होता है? गाय का विकार को गव्य बोलते हैं। मद कहीं गाय से पैदा करती है? दूध दही घी ये गव्य है, और गोमूत्र और गोबर, ये पांच चीज मिलाते हैं तब पंचगव्य होता है। अब तुम लोग बंबई वासियों को क्या पता पंचगव्य क्या है? हैं? सूतक और पातक की शुद्धिकरण के लिए पंचगव्य के बिना सूतक दोष और पातक दोष की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। लेकिन आजकल तो क्या करते हैं, तुलसी पानी छिड़क दो जहां भी शुद्धि हो गई, गंगा जल छिड़क दो, नहीं होता। शास्त्र प्रमाण है, पंचगव्य सेवन करना पड़ता है। हाँ, तब जाकर पातक दोष, पातक माने कोई मरा हुआ हो परिवार में, उसकी जो कर्म करने उसको पातक बोलते हैं। कर्म विधि पूरा करके फिर शुद्धिकरण करने का दिन आता है तो पंचगव्य सेवन करके शुद्धि होती है। कोई पैदा हुआ परिवार में, बहू का बेटा हुआ तो, या अपनी पत्नी का बेटा हुआ, अपने बेटा हुआ या बहू का बेटा हुआ, तो वो होगा सूतक। तो अमुक दिन वो दोष लगता है, अमुक दिन, दस दिन का विधान है हमारे सनातन धर्म में, दस दिन तक सूतक रहता है और तेरह दिन तक पातक दोष रहता है। तेरहवीं दिन में पंचगव्य सेवन करके पातक दोष से निवृत्ति, दसवें दिन में पंचगव्य सेवन करके सूतक दोष की निवृत्ति होती है। क्योंकि ये पांचों चीज गाय के पृष्ठभाग से सत्य के आश्रय के प्रतीक में गाय के शरीर से निकले थे, इसलिए सनातन धर्म ने उनको शुद्धिकरण पवित्रता के रूप में ग्रहण किया। लेकिन मुख से जो झूठ बोला था, इसलिए गाय का गोबर शुद्ध हो सकता है, गाय का जूठा शुद्ध नहीं होता। भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनाया था, प्रसाद बनाया था, गाय ने खा ली, तो वो अब भगवान को भोग नहीं लगेगा, समझे कि नहीं? वो जूठा हो गया अपवित्र, क्योंकि उसका मुख असत्य का भाषण किया था। तो पूंछ ने भी सत्य का आश्रय लिया, ये ब्रह्मा ने झूठ बोला, तो वैतरणी उसी के आश्रय से तुम लोग तरते हो। वैतरणी में क्या समाज क्या पकड़ते हैं? गाय के पूंछ। सिंह क्यों नहीं पूंछ पकड़ते हो? वो अशुद्ध है, मुख का भाग अशुद्ध है, कान नहीं पकड़ा जाएगा, सिंह नहीं पकड़ा जाएगा। भूधारतामुदहमपेक्ष श्रीर भूधार एव किमत सुलभे सुमते लभस्व केदारमा कलित मुक्ति महौषधीनाम पादारविंद भजनम परमेश्वरस्य सुमते। ये संबोधन है, मन को समझा रहे हैं, बुद्धि को समझा रहे हैं। हे सुमति, हे बुद्धि, सद्बुद्धि, तुम मुक्ति महौषधीनाम, मुक्ति रूपी महान औषधि की खेती करनी है, औषधि तैयार करना है तुमने। कौन सी औषधि बोलो? शुगर हटाने के लिए कि जन्म मृत्यु हटाने के लिए? मधुमेह हटाने के लिए कि जन्म मृत्यु हटाने के लिए? है। जांबू फल खाओगे जन्म मृत्यु हटेगा कि मधुमेह हटेगा? अरे भाई, एक जन्म का मधुमेह हटे तो दूसरा जन्म होगा तो फिर मधुमेह आ जाएगा, तो जन्म मृत्यु ही हटाओ ना भाई। ऐसा कोई औषधि है तुम्हारे पास? नहीं है महाराज। तो फिर खेती करो। महाराज मेरे पास खेत तो है ही नहीं, खेती कहां करें? केदारम, केदार माने खेत। केदारम आकलित, केदार का आश्रय लो जिस खेत में मुक्ति महौषधि का निर्माण उत्पादन किया जा सके। कौन सी औषधि है वो? पादारविंद भजनम केदारम। भगवान शिव का जो चरण है उसका ग्रहण करो, वही खेत हो जाएगा। भगवान शिव के चरण रूपी खेत में मुक्ति रूपी महौषधि की खेती करो। परमेश्वरस्य पादारविंद भजनम केदारम है, उसी में ही मोक्ष रूपी परम औषधि की खेती हो सकती है, अन्यत्र नहीं। जैसे कहा जाता है ना, असली केसर की खेती कश्मीर में ही हो सकती है ना, सेफ्रॉन केसर, वो कश्मीर में जो केसर हो सकता है और दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है, वो क्वालिटी उस जमीन की खासियत है। तुम्हें खुद केसर खरीदना हो तो खरीद लो, खुद केसर की खेती करनी हो तो कश्मीर की भूमि चाहिए कि नहीं? इसी तरह भोग विलास यलोक परलोक जो कुछ भी प्राप्त करनी हो तो अन्य पुरुषार्थ से तुम प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मोक्ष रूपी महाऔषधि तैयार करनी हो तो परमेश्वरस्य पादारविंद भजनम केदारम, परमात्मा के चरण का आश्रय लिए बिना मोक्ष रूपी महाऔषधि तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। हे सुमते संबोधन, इसलिए उसी का आश्रय लो और मोक्ष औषधि प्राप्त करो, तो जन्म मृत्यु से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा भाई। और क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।